विक्रम जी ओबेरॉय मेंशन की टेरेस पर थे। उनके साथ में शौर्य और मायरा भी मौजूद थे। वो आज अपने घर के एक सदस्य को कुछ ज्यादा ही याद कर रहे थे, जिसका नाम बंधन था। वहीं उनके मुंह से बंधन का नाम सुनकर शौर्य और मायरा दोनों ही चौंक गए। बंधन? मायरा ने हैरानी से पूछा, ये तो आर्यक्रो की मॉम का नाम है ना? क्या आज आप बड़ी मॉम को बहुत ज्यादा ही मिस कर रहे हो? वो यहां होती तो शायद हम दोनों का कोई वजूद ही नहीं होता, शौर्य बोला। उन दोनों की बातें सुनने के बाद विक्रम जी कुछ पल चुप रहे और फिर गहरी सांस लेकर छोड़ी। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, आज तक उसके बारे में कोई नहीं जानता, पर मैं चाहता हूं अब उसे सब जाने। बंधन को अब तक इस घर से दूर रखा गया, ये आर्य की इच्छा थी और साथ ही आशु भी। तो क्या बड़ी मॉम जिंदा है? मायरा ने पूछा। उन दोनों को विक्रम जी की बातें काफी कंफ्यूज कर रही थी। आई विश कि वो जिंदा होती, पर ऐसा नहीं है। आर्या की छोटी बहन का नाम भी बंधन है। आशु उससे नफरत करता है क्योंकि उसे पैदा करते हुए बंधन की जान चली गई। आर्या उसे जी जान से प्यार करता है, तभी उसने उसका नाम बंधन रखा। विक्रम जी ने उन्हें बंधन के बारे में बताया। शौर्य और मायरा को कुछ देर तक तो उनकी बात पर यकीन ही नहीं हुआ। वो दोनों हैरानी से एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। क्या हमारी एक और बहन है और अब तक हमें पता तक नहीं? कहाँ है वो? मायरा ने पूछा। मैंने कहा ना, आशु नहीं चाहता कि वो कभी यहाँ आए। उसने आज तक उसकी शक्ल तक नहीं देखी। उसका बचपन आर्या के मामा के यहाँ बीता, लेकिन अब वो कहाँ है ये आर्या के अलावा कोई नहीं जानता। उसने मुझे भी नहीं बताया, विक्रम जी ने कहा। क्या ब्रो उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं? हम भी तो उनके सिबलिंग्स हैं, हमसे तो कभी उन्होंने ठीक से बात तक नहीं की, शौर्य ने बुझी आवाज में कहा। ये सच था। शौर्य और मायरा बचपन से ही आर्या से काफी प्रभावित थे और उससे बात करने के लिए उसके पीछे रहते थे। आशुतोष से नफरत करने की वजह से आर्या ने कभी उनसे ठीक से बात नहीं की और धीरे धीरे वो दोनों से नापसंद करने लगे। कहीं ना कहीं उनके दिल में आर्या की अटेंशन पाने की इच्छा थी। उन दोनों के उतरे हुए चेहरे देखकर विक्रम जी ने कहा, जानता हूँ आर्या ने कभी तुम दोनों के साथ सही बर्ताव नहीं किया। तुम दोनों नहीं जानते, पर उसकी वजह भी आशु ही है। मायरा की मॉम ने हमेशा ही आर्या को अलग समझा और मायरा के पास नहीं आने दिया। आशु और उसके डिवोर्स के बाद क्रिस्टी आ गई। तब तक हालात इतने बिगड़ गए थे कि आशु और आर्या के बीच की दीवार खाई में बदल चुकी थी। ठीक है, पर इनने हम दोनों की क्या गलती है? उनकी अटेंशन पाने के लिए न जाने हमने क्या कुछ नहीं किया, मायरा ने आंखें घुमाकर कहा। हाँ, और उस क्या कुछ में काफी चीजें बहुत ज्यादा गलत थीं। तुम दोनों की इमेज आर्या की नजरों में बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, विक्रम जी ने कहा। अच्छा, फिलहाल के लिए हम उनकी बात ना करके बंधन पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। क्या वो हम दोनों के बारे में जानती है? कैसी दिखती है वो और कितनी बड़ी होगी? शौर्य ने एक्साइटमेंट के चलते एक साथ कई सवाल पूछ डाले। कहा ना, मुझे नहीं पता वो कैसी दिखती है या क्या करती है। मैं सिर्फ इतना बता सकता हूँ, इस समय वो लगभग 21 साल की होगी, विक्रम जी ने बताया। ठीक है, फिर आप ब्रो को समझाइए कि वो उन्हें यहाँ ले आए। डैड का क्या है, वो भी तो अपनी मनमानी करते रहते। अब हम भी बड़े हो गए और हम भी मनमानी करेंगे, शौर्य बोला। वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं बंधन भी बिल्कुल आर्या ब्रो की तरह हुई तो? मायरा ने कहा। अभी से ख्याली पुलाव बुनना बंद करो, बंधन यहाँ कभी नहीं आएगी। जहाँ तक मैं आर्या को जानता हूँ, वो इस घर के किसी भी इंसान को बंधन से नहीं मिलने देगा। हम बस उसे याद कर सकते हैं और कुछ नहीं, विक्रम जी ने उदास चेहरे से कहा और वहां से चले गए। शौर्य और मायरा अभी तक वहीं थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। चलो, अब नई प्लानिंग करने का टाइम आ गया है। क्यों ना बंधन को यहाँ लाया जाए, शौर्य ने कहा। मैं आर्या ब्रो से पंगा नहीं लेना चाहती। हम कुछ करते हैं उससे पहले ही उन्हें सब पता होता है। वो उनकी रियल सिस्टर है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है कि उन्होंने अपनी रियल सिस्टर को इतना प्यार दिया और हम दोनों पर हमेशा गुस्सा दिखाया। इस बार आने दो उन्हें घर पर। बैंड ना बजा दी तो मेरा नाम भी मायरा ओबेरॉय नहीं, मायरा ने हल्के गुस्से में कहा और वहां से उठकर चली गई। उसके जाने के बाद शौर्य भी जा चुका था। बंधन ओबेरॉय भी ओबेरॉय फैमिली का हिस्सा है। इस बारे में आर्य, आशुतोष और विक्रम जी के अलावा बाकी लोग अब तक अनजान थे। अगली सुबह शिवी की आंख खुली। वो आर्या के साथ उसके घर पर थी। आर्या अब तक सो रहा था। वो सुबह उठकर किचन में गई और पानी का ग्लास लेकर बाहर आई। शिवी ने उसे जगाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, पर फिर अपना हाथ बीच में ही रोक लिया। उसने आर्या के ऊपर पानी के कुछ छींटे डाले। आर्या आंखें मिचमिचाते हुए खड़ा हुआ। गुड मॉर्निंग, शिवी ने मुस्कुराकर कहा, तो वहीं आर्या का मुंह बना हुआ था। सुबह सुबह ऐसे कौन उठाता है? मैं, शिवी ने हंसकर कहा। चलो, अब बहुत हो गया। अपने ड्राइवर को कॉल करो और बोलो हम दोनों को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दे। तुम कैसे मैनेज करोगी? तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है, इन सब में तुम्हें लेट नहीं हो जाएगी? हाँ, ये भी है, शिवी ने हामी भरी। ओके, फिर ऐसा करते हैं, पहले तुम्हें घर ड्रॉप कर देंगे, आर्या बोला। शिवी ने उसकी बात पर हामी भरी तो उसने तुरंत ड्राइवर को कॉल करके वहां गाड़ी लेकर आने को बोल दिया। ड्राइवर के आने तक शिवी और आर्या उसके साथ जाने के लिए तैयार हो रहे थे। उसके आने के बाद आर्या ने शिवी को उसके घर छोड़ा और खुद हॉस्पिटल चला गया। ध्वनि ने सब कुछ अच्छे से संभाल रखा था, हालांकि आर्या के अचानक गायब होने की वजह से वो काफी नाराज हुई थी। कितने बुरे हो तुम दोनों, मैंने सोचा लव बर्ड्स को थोड़ा अकेले में टाइम देते, पर दोनों मौका देखकर फुर हो गए। ध्वनि आर्या के कंधे पर मारते हुए बोली, हम दोनों कोई लव बर्ड्स नहीं है, तुम मुझे इस तरह यहाँ कैद करके रखोगी तो बाहर तो जाऊंगा ही ना। अच्छा बताओ, सारी रिपोर्ट्स कब तक आएगी? आर्या बेड पर बैठते हुए बोला। आएगी नहीं, आ गई है, तुम्हारी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है। ध्वनि ने अपने हाथ में एक फाइल पकड़ रखी थी, वो उसे पढ़ते हुए बोली, मैंने तो पहले ही कहा था। वो दोनों आपस में बात कर रहे थे तभी विक्रम सिंह ओबेरॉय आशुतोष ओबेरॉय के साथ वहां पहुंचे। बाहर उन्हें आर्या की रिपोर्ट्स नॉर्मल होने के बारे में पता चल चुका था। आशुतोष वहां आर्या का फैसला जानने के लिए आया था। उन्हें वहां देखते ही आर्या के चेहरे के भाव गंभीर हो गए। जानकर अच्छा लगा, तुम बिल्कुल फिट एंड फाइन हो, आशुतोष मुस्कुराते हुए वहां रखी चेयर पर बैठ गए। आर्या ने उनकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। विक्रम सिंह जी बोले, मैंने तुम्हारी बात आर्या तक पहुंचा दी थी। हाँ जानता हूँ, आपने बता दिया होगा, बस तभी यहाँ इसका फैसला जानने आया हूँ। तो बताओ आर्या, क्या तुम्हें मेरी सारी शर्तें मंजूर हैं? मैं तुम्हारे लिए कैरिन को घर से निकालने के लिए तैयार हूँ, उससे हर एक रिश्ता तोड़ने के लिए तैयार हूँ। बदले में तुम्हें मेरी मर्सी की लड़की से शादी करनी होगी और हमेशा के लिए ओबेरॉय मेंशन में रहने के लिए आना होगा। आशुतोष जी ने एक बार फिर उसे सब बता दिया। मुझे मंजूर है, आर्या ने हल्की मुस्कुराहट के साथ जवाब दिया। मैं उस लड़की को रिजेक्ट नहीं करूंगा, पर उसने मुझे रिजेक्ट किया तो आप मुझे फोर्स नहीं करेंगे, ना उसके लिए और ना ही कभी किसी और लड़की के लिए। ठीक है, मुझे तुम्हारी ये कंडीशन भी मंजूर है। अब तुम बिल्कुल ठीक हो तो ऐसा करो, आज ही ओबेरॉय मेंशन चलते हैं, तुम कल से ऑफिस वापस ज्वाइन कर लेना, आशुतोष ने कहा। आपकी नई गर्लफ्रेंड अभी तक वहाँ होंगी, उन्हें जाने वहाँ से दीजिए, आराम से अलविदा कहिए, मैं आ जाऊंगा, आर्या ने उनसे थोड़ा टाइम मांगा। उसकी जरूरत नहीं है, कैरिन कल रात ही वहाँ से जा चुकी है, आशुतोष ने बताया।
आर्या ने कुछ भी बोलने से पहले एक बार ध्वनि की तरफ देखा। उसे इन सब फैमिली ड्रामे से काफी गुस्सा आ रहा था और साथ ही आर्या के डिसीजन से भी। उसने इशारे से बात को संभालने के लिए कहा, आप इसे कल ले जाइएगा अंकल, अभी इसे ऑफिस में कुछ इम्पोर्टेंट पेपर साइन करने हैं, तो आर्या को वहां जाना होगा, ध्वनि ने उसकी नज़रों को पढ़ते हुए बहाना बनाया। आशुतोष ने तुरंत उनकी बात मान ली। डिस्चार्ज फॉर्मैलिटी पूरी करने के बाद ध्वनि आर्या के साथ गाड़ी में था और दोनों डिज़ायर्स के लिए निकल रहे थे। रास्ते में आर्या ने शिवी को अपनी रिपोर्ट्स के बारे में बता दिया था और साथ ही ऑफिस आने के लिए भी। थैंक गॉड आज तुमने बचा लिया, वरना अभी उनके साथ जाना पड़ता, आर्या गाड़ी से बाहर निकलकर बोला। मन तो कर रहा था तुझे खुद जाकर ओबेरॉय मेंशन में छोड़कर आऊं, तेरी उनसे नहीं बनती तो क्या जरूरी है वहां जाने की, ध्वनि उसके पीछे पीछे आ रही थी। हाँ ठीक है, मेरी एब्सेंस में सब कुछ सही तो था ना, किसी ने कोई रूल तो ब्रेक नहीं किया? नहीं सब ठीक है, ध्वनि ने जवाब दिया। आर्या डिजायर्स लौट चुका था। उसके वहां आने के बाद उसके एम्प्लॉयज और भी एफिशिएंसी के साथ काम करने लगे, तो वहीं शिवी भी एक्स्ट्रा केयर बरत रही थी। आर्या की शादी के लिए हाँ कहते ही आशुतोष के चेहरे पर जीत के भाव थे। उसे नंदिनी से मिले हुए दो दिन भी नहीं हुए थे और उसने आर्या सहित पूरी फैमिली को मना लिया था। इसी बारे में बताने के लिए उन्होंने नंदिनी को कॉल किया। मुबारक हो होने वाली समधन जी, यही कहते हैं ना इंडिया में, आशुतोष हंसकर बोले। मैंने सबको तैयार कर लिया है, अब आपकी बारी। ये कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं हो गया? नंदिनी ने हैरानी से पूछा। आप अभी आशुतोष ओबेरॉय को जानती ही कहाँ हैं, मेरे लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। फिर तो लगता है आपसे ही टिप्स लेनी होगी, मैंने जिम को इस बारे में बताया तो वो नाराज हो गए, उनका ये हाल है तो शिवनंदिनी कैसे रिएक्ट करेगी, आई डोंट नो, नंदिनी ने परेशानी के साथ कहा। अच्छा तो मेरी पहली टिप्स ये होगी कि कई बार बच्चों के सामने बच्चा बनना पड़ता है, उनकी हर बात माननी पड़ती है, उनके हिसाब से चलना होता है, आप भी आजमा कर देख लीजिए, क्या पता आपकी बेटी मान जाए। हाँ फिर भी नहीं माने तो आप जोर जबरदस्ती कर सकती हैं, आशुतोष ने सलाह दी। नंदिनी ने उसकी बात पर हामी भरी और कॉल कट कर दिया। उनसे बात होने के बाद उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उसने जल्दबाजी में उन्हें आर्या और शिवनंदिनी की शादी के लिए कह तो दिया था, पर शिवी को मनाना सच में टेढ़ी खीर था। नंदिनी ने घड़ी में समय देखते हुए कहा, 4 बज रहे हैं, कुछ देर में शिवी आती ही होगी, मुझे उससे पहले घर पहुंचना होगा और आज ही उसे इस शादी के लिए मनाना होगा, वो प्यार से मानेगी तो ठीक है, वरना मैं अच्छे से जानती हूँ कि क्या करना है। नंदिनी के चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कुराहट थी। उसने सारा काम वहीं छोड़ा और शिवी के अपार्टमेंट जाने के लिए निकल पड़ी।